आज है 18 अगस्त दिन शुक्रवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। स्पेन में हुए चरमपंथी हमलों में मरने वालों की संख्या 14 हुई। बार्सिलोना शहर में लोगों ने नारे लगाए, हम डरे नहीं हैं। इंफोसिस लिमिटेड के सीईओ विशाल सिक्का के इस्तीफे से शेयर बाजार थरथराए, सैकड़ों करोड़ स्वाहा हुए। 29 साल पहले पाकिस्तान के फौजी शासक जियाउल हक एक हवाई हादसे में मारे गए, पर क्या ये वाकई एक हादसा था?
मैं अपने तमाम एनालिसिस के अंदर बाद में ये बताता रहा हूँ कि मेरी उंगली तो अमेरिका की तरफ उठती है।
विवेचना में रेहान फजल से सुनिएगा विस्तार से, लेकिन ये सभी कुछ होगा विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। उत्तर पश्चिम स्पेन में हुए हमलों में पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की मौत की खबर है। शुक्रवार को कैम्ब्रिल्स में एक कार को लोगों की भीड़ पर चढ़ा दिया गया था। इसमें बुरी तरह से जख्मी हुई एक महिला ने दम तोड़ दिया है। पुलिस ने कार में सवार सभी 5 लोगों को मार दिया है। गुरुवार को बार्सिलोना में हुए इसी तरह के हमले में 13 लोगों की मौत हो गई थी। आज दोपहर हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। एक मिनट तक मौन रखने के बाद भीड़ ने हम डरे नहीं हैं के नारे लगाए। इस मामले में मुरक्कन मूल के 17 साल के युवक को संदिग्ध माना जा रहा है, जो अभी फरार चल रहा है। 4 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राखॉय ने आतंकवाद पर चिंता जताई।
Uno de los grandes problemas que en este momento azotan a toda la Unión Europea, en realidad el primer problema.
पूरे यूरोप में हमें आतंकवाद बहुत चिंतित करता है, और ये चिंता पेरिस, नीस, लंदन, बर्लिन और स्वीडन की घटनाओं को देखते हुए जायज है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हम बुनियादी अधिकारों की बात कर रहे हैं, और सबसे जरूरी है किसी का जिंदा रहने का अधिकार। ये थे स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राखॉय के शब्द। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अस्पताल में हुई दर्जनों बच्चों की मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसी महीने 10 दिनों के अंदर 80 बच्चों की मौत हो गई थी। राज्य सरकार मीडिया के उन आरोपों को गलत बता रही है, जिनमें कहा गया था कि बच्चों की मौत बिल न भरने की वजह से, ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी होने की वजह से हुई थी। सरकार का कहना है कि बच्चों की मौत एनसेफेलाइटिस से ही हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की न्यायिक जांच और जवाबदेही तय करने की मांग कर रही याचिका पर सुनवाई कर रहा था। हांगकांग के न्याय मंत्री ने इस बात से इनकार किया है कि 3 युवा लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को कड़ी सजा दिलवाने के उनके विभाग के निवेदन के पीछे कोई राजनीतिक मकसद था। गुरुवार को एक कोर्ट ने तीनों छात्र नेताओं को 6 से 8 महीने की सजा सुनाई थी। रिम्स की यूएन ने उस रिपोर्ट को भी खारिज किया कि इस मामले में उन्होंने इसके खिलाफ सलाह देने वाले अपने सहकर्मियों की राय की अनदेखी की। उनका कहना है कि यह फैसला कानूनी सिद्धांतों के आधार पर लिया गया। इस सजा का आधार फैसले में पूरी तरह साफ किया गया है। आमतौर पर ऊंची अदालत निचली अदालत के फैसलों में दखल नहीं देती है, लेकिन इस बार सजा की समीक्षा जरूरी थी, क्योंकि निचली अदालत ने मामले में बुनियादी गलतियां की थी। ये थे हांगकांग के न्याय मंत्री रिम्स की यूएन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के प्रधानमंत्री ने जर्मनी की मुख्य राजनीतिक पार्टियों को अपने देश का दुश्मन करार दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की जर्मनों को इन पार्टियों को वोट नहीं देना चाहिए। रेसप तैयप एर्दोगान ने कहा कि क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स, सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन्स को आने वाले चुनावों में सबक सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने तुर्की वोटरों से अति दक्षिणपंथी या अति वामपंथी पार्टियों का समर्थन देने की अपील की है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस ने कहा है कि दक्षिण एशिया में हाल के कुछ सालों में आई मानसूनी बाढ़ से करीब 1,60,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। खाने की कमी और बीमारियों के फैलने से मानवता पर बड़े संकट का डर जताया गया है। बांग्लादेश और नेपाल का 1/3 से ज्यादा इलाका बाढ़ में पानी के डूबा हुआ है। भारी संख्या में लोग अब भी कटे हुए हैं। ग्रामीण छत, खाने और पीने के साफ पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और इस साल बाढ़ में करीब 500 लोगों की मौत हुई है। चीन में केसों की सुनवाई पूरी तरह से ऑनलाइन करने के लिए एक इंटरनेट कोर्ट की शुरुआत हुई है। सरकारी मीडिया पूर्वी शहर हैंगजू में हुई इस अदालत को दुनिया की ऐसी पहली अदालत करार दे रहा है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। स्पेन चरमपंथी हमलों की चपेट में है। कल बार्सिलोना में फुटपाथ पर चल रहे लोगों पर कार दौड़ाकर 13 लोगों को मार डाला गया और आज कैम्ब्रिल्स शहर में इसी तरह चरमपंथियों ने भीड़ पर कार चढ़ाकर लोगों को मारने की कोशिश की। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इस हमले में एक महिला की मौत हो गई है और पुलिस ने 5 संदिग्ध चरमपंथियों को मार डाला है। बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुना रहे हैं कुलदीप मिश्र।
ये एक श्रद्धांजलि सभा थी, लेकिन बार्सिलोना के लोगों ने इसे अपनी एकता और निडरता प्रदर्शित करने के मंच में बदल डाला। उन्होंने नारे लगाए, हम डरे नहीं हैं। बार्सिलोना में हजारों लोग जुटे। मकसद था गुरुवार को हुए हमले में जान गंवाने वाले 13 लोगों को श्रद्धांजलि देना। स्पेन के बादशाह की अगुवाई में 1 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद भीड़ ने तालियां बजाई, नारे लगाए। कल के इस बड़े हमले के बाद आज भी कैम्ब्रिल शहर में भीड़ पर कार चढ़ाकर लोगों को कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने कहा है कि कार चला रहे 5 संदिग्ध चरमपंथियों को मार दिया गया। इस घटना में 1 महिला की मौत हो गई और 6 लोग जख्मी हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इन हमलावरों ने नकली विस्फोटक बेल्ट पहनी हुई थी, लेकिन उनकी कार पलट गई जिसके बाद वे बाहर निकले और कथित तौर पर पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। बीते 1 साल में यूरोप में 7 ऐसे हमले हुए हैं जब वाहनों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। गुरुवार को स्पेन में दहशत फैल गई थी जब बार्सिलोना शहर के ला रामब्लास में एक वैन राहगीरों को कुचलती चली गई, जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। हमले की चपेट में 18 देशों के नागरिक आए हैं, जिनमें जर्मनी, रोमानिया, इटली, अल्जीरिया और चीन जैसे देश शामिल हैं। ब्रिटिश टूरिस्ट स्टीव गैरेट पास की ही एक बेकरी में मौजूद थे।
बाजार में बहुत सारे लोग भाग रहे थे, एक बड़ी लहर सी थी, बहुत सारे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए। हम 4-5 लोग उस बेकरी में घुस गए और सीधे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। हमने नीचे देखा तो सैकड़ों लोगों की एक लहर नीचे से गुजर रही थी। मैं इंग्लैंड से हूं और मुझे याद आ गया कि लंदन में क्या हुआ था। हम बहुत फिक्रमंद थे कि अब क्या होने वाला है।
ब्रिटिश पर्यटक स्टीव गैरेट के शब्द। इस्लामिक स्टेट ने बार्सिलोना हमले की जिम्मेदारी ली है। स्पेन का प्रशासन इन दोनों घटनाओं को बुधवार रात एक घर को तबाह करने वाले धमाके से जोड़कर देख रहा है। पुलिस का कहना है कि उन्हें भारी मात्रा में गैस मिली है जिसे बम धमाके के लिए इस्तेमाल किया जाना था। पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय ने 3 दिन का शोक घोषित किया है। कुलदीप मिश्र, बीबीसी, दिल्ली।
और इस तरह के हमले यूरोप में पिछले कुछ महीनों में कई बार हो चुके हैं। उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं मोहनलाल शर्मा और सरोज सिंह।
पेरिस, 9 अगस्त 2017।
एक व्यक्ति ने कुछ सैनिकों पर बीएमडब्ल्यू गाड़ी दौड़ा दी, इसमें 6 लोग घायल हो गए।
लंदन, 3 जून 2017।
3 जिहादियों ने लंदन ब्रिज पर लोगों पर वैन दौड़ा दी, कई लोगों पर चाकू से हमला किया। इसी महीने में फिंसबरी पार्क में मुसलमानों पर एक वैन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई।
स्टॉकहोम, स्वीडन, 7 अप्रैल 2017।
उज़्बेक रखमत ओकिलोव ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में लॉरी घुसाकर 4 लोगों को मार दिया था।
लंदन, 22 मार्च 2017।
वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर लोगों पर एक गाड़ी दौड़ा दी गई, एक कार चालक ने एक पुलिस कर्मी पर चाकू से हमला किया, उसकी मौत हो गई।
बर्लिन, जर्मनी, 19 दिसंबर 2016।
ट्यूनिसिया के अनीस अमरी ने क्रिसमस मार्केट में एक ट्रक दौड़ा दिया, 12 लोगों की मौत हो गई।
नीस, फ्रांस, 14 जुलाई 2016।
ट्यूनिसियाई मूल के मोहम्मद लाइवेज बुहलल ने बास्तील डे पर आतिशबाजी देखने के लिए पहुंची भीड़ पर एक लॉरी से हमला किया, 86 लोगों की मौत हो गई।
फ्रांस, दिसंबर 2014।
नेंटेस में क्रिसमस मार्केट में वैन से हमला किया गया और दिजा में लोगों पर कार दौड़ाई गई, इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
ये जानकारी दे रहे थे मोहनलाल शर्मा और सरोज सिंह। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूँ राजेश जोशी।
सुनो भाई साधो, इसी में साईं
कल इंडिया बोल की जगह सुनिएगा बंटवारे के 70 साल पूरे होने पर दिल्ली और कराची के युवा कवियों और शायरों की गुफ्तगू पर आधारित विशेष कार्यक्रम। कल इंडिया बोल नहीं होगा, होगा विशेष कार्यक्रम।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
आईटी सेक्टर की कंपनी इंफोसिस लिमिटेड के सीईओ विशाल सिक्का ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका असर ये हुआ है कि शेयर बाजार लड़खड़ा गया और इंफोसिस के शेयर धड़ाम से गिर पड़े हैं। अब कंपनी के डायरेक्टर्स इस उथल पुथल के लिए उस शख्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिसने कंपनी की बुनियाद रखी थी, यानी एनआर नारायण मूर्ति। मैंने पूरे मामले को समझने के लिए मुंबई में बीबीसी के बिजनेस संवाददाता समीर हाशमी से बात की और पूछा कि मामला क्या है।
नारायण मूर्ति ने इंफोसिस जो थी उस शुरुआत उसकी की थी 80 के दशक में, और उसके बाद 90 के दशक और 2000 के बाद इंफोसिस को आज इतना बड़े, जो आज इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें नारायण मूर्ति का बड़ा हाथ रहा है। लेकिन 2014 के बाद नारायण मूर्ति ने कंपनी छोड़ दी, वो रिटायर हो गए, लेकिन आज भी वो एक स्टेक होल्डर है, यानी कि उनका इस कंपनी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है। वो इस कंपनी को अब चलाते नहीं है, ना वो इस कंपनी के बोर्ड पे हैं, लेकिन क्योंकि वो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं और उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, इसकी स्थापना की थी, इसलिए आज जो भी वो कहते हैं इस कंपनी के बारे में उसको काफी अहमियत दी जाती है, बाजार में भी, इन्वेस्टर्स भी, और जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के वो भी काफी तवज्जो उस बात को देते हैं। अब क्या हुआ है कि पिछले 3 साल से विशाल सिक्का जो थे, वो जो सीईओ थे, उनको 3 साल पहले इस कंपनी में लाया गया। इस कंपनी को वापस पुराने दिन, जिस जब इंफोसिस बहुत बड़ी कंपनी होती थी, उस तरह बनाने के लिए, क्योंकि इंफोसिस के हालात ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे। लेकिन हुआ क्या इस दौरान है कि विशाल सिक्का का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था, यानी कंपनी चलाने की जो स्टाइल था, वो नारायण मूर्ति को पसंद नहीं आया, और उन्होंने पिछले कुछ महीनों से लगातार पब्लिकली विशाल सिक्का को और जो कंपनी की बोर्ड है जो विशाल सिक्का की तरफ है उसकी काफी क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने ये कहकर कि ये इंफोसिस का कभी स्टाइल नहीं रहा जिस तरह विशाल सिक्का इस कंपनी को चला रहे हैं, और इस चक्कर में आज विशाल सिक्का ने अनाउंस ये कर दिया कि वो जो है अब ये इस कंपनी को चला नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ निजी आरोप भी लगाए गए हैं नारायण मूर्ति की तरफ से।
जो बहुत सामान्य आदमी है उसके लिए इतनी बड़ी खबर कैसे है? बाजार लड़खड़ा रहे हैं, बाजार एकदम धड़ाम से गिर गया है नीचे।
इसका काफी असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बाजार में अगर आप देखें तो इंफोसिस इंडिया की, भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसकी काफी महत्व है भारतीय जो स्टॉक मार्केट है, इसमें काफी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा है। लेकिन पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है कि जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है वो काफी खराब समय से गुजर रही है। उसकी कई वजहें हैं, क्योंकि बिजनेस ग्लोबल लेवल पे अच्छा नहीं हो रहा है। अमेरिका में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने आके इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर काफी दबाव डाला है कि अब वो इंडियंस को नहीं ला सकते हैं यहाँ पे, और उनको अमेरिकी मार्केट से ही लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो काफी प्रेशर में चल रही है आईटी का। विशाल सिक्का ने क्या किया पिछले 2 साल में, काफी हद तक ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे, मुश्किलात थी, इनका सामना किया और कुछ ऐसी पॉलिसीज लाए हैं जिससे काफी इंप्रूवमेंट हुआ है इंफोसिस की परफॉर्मेंस में। विशाल सिक्का का जो ये रेजिग्नेशन है बहुत सडन है, बहुत अचानक है, और इसने काफी शॉक पहुंचाया है इन्वेस्टर्स को और बाजार को। तो जो लोगों को यकीन था इंफोसिस के ऊपर कि हाँ इंफोसिस जो है फिर से दोबारा, जो इसके थोड़े कदम लड़खड़ा रहे थे इन टर्म्स ऑफ बिजनेस करने के, वो अब वापस लग रहा था कि अपने पुराने दिनों में चले जाएंगे जिस तरह वो परफॉर्म करते थे, वो विश्वास चला गया है।
आपके पास क्या कुछ ताजा जानकारी है कि कुल मिला के कितना असर बाजार पर पड़ा है?
इंफोसिस का जो स्टॉक था समझिए 8-10% गिरा है, यानी कि 800 से 1,000 करोड़ रुपए एक दिन में उड़ गए अगर आप उसकी वैल्यू देखें मार्केट में।
ये थे मुंबई से समीर हाशमी। आज विवेचना में बात करते हैं पाकिस्तान के फौजी तानाशाह जियाउल हक की। जनरल जिया ने फौज ही नहीं बल्कि एक हद तक समाज की सोच भी बदल डाली और उसे उसके एक बड़े हिस्से को कट्टरवाद के रास्ते पर रवाना किया। पर फिर 17 अगस्त 1988 को जिस हवाई जहाज में वो सफर कर रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर पड़ा। जिया की मौत के 29 बरस बाद उनकी मौत के रहस्य पर रेहान फजल की ये विवेचना।
सत्रह अगस्त 1988, पाकिस्तान का बहावलपुर एयरबेस, समय दोपहर 3:46। अमेरिका में बने हरकुलिस C-130 विमान ने टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ना शुरू किया। विमान में जनरल जियाउल हक के साथ बैठे थे पाकिस्तानी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, पाकिस्तान में अमरीका के राजदूत आर्नल्ड रफेल, पाकिस्तान में अमरीकी एड मिशन के प्रमुख जनरल हर्बर्ट वासन और पाकिस्तानी सेना के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी। जनरल जिया बहावलपुर गए थे नए अमरीकी टैंक MI एब्राम्स का परीक्षण देखते। शुरू में वे वहां नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी फौज के ही कुछ अधिकारियों ने उन पर जोर डाला कि वो वहां जरूर जाएं। जनरल जियाउल हक के पुत्र एजाजुल हक याद करते हैं।
उन दिनों में एक तो उनकी ट्रैवलिंग पर ममानत किस्म का उन्हें वार्न किया गया था वजारत दाखिला की जानब से, और दूसरा वो जिस दौरे पर गए थे उस दौरे पर जाने की उनकी इतनी ख्वाहिश भी नहीं थी, और बाद में हमें मालूम हुआ कि कुछ साथियों ने उन्हें मजबूर किया इस दौरे पर जाने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्लान हुआ हुआ था कि इसको वहां पर एक सैबोटाज और ये जो बाद में मामला हुए जहाज के, तो उनको कहा भी उन्होंने बहुत अपने करीबी एड्स को कि ये मालूम नहीं कि क्यों मुझे रोजाना फोन करके इसरार कर रहे हैं कि ये से ऐसी एक एक्सरसाइज पे जिसपे यानी कि कोई डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस या डीजी टेक्निकल ट्रेनिंग या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा सकते थे।
पाक वन के कॉकपिट की कमान संभाली हुई थी विंग कमांडर माशूद हसन ने, जिनको इस जिम्मेदारी के लिए खुद जनरल जियाउल हक ने ही चुना था। जैसे ही विमान पूरी तरह से हवा में आया, बहावलपुर के कंट्रोल टावर ने विंग कमांडर माशूद हसन से एक रूटीन सवाल पूछा, अपनी पोजीशन बताइए। माशूद ने जवाब दिया, पाक वन स्टैंड बाई। इसके बाद माशूद चुप हो गए। कंट्रोल टावर उनसे संपर्क करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब बेकार। टेक ऑफ के कुछ मिनटों के अंदर पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण विमान पाक वन लापता था। लेकिन इस बीच हवाई अड्डे से करीब 18 किलोमीटर दूर कुछ ग्रामवासियों ने आकाश में देखा कि पाक वन रोलर कोस्टर अंदाज में हवा में कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहा था। तीसरे लूप के बाद वो सीधे नाक के बल रेगिस्तान में गिरा और चारों तरफ आग का गोला फैल गया। समय था 3:51। लगभग उसी समय पाकिस्तानी सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मिर्जा असलम बेग ने बहावलपुर हवाई अड्डे से अपने छोटे टर्बोजेट में उड़ान भरी। मिनटों में वो इस स्थान के ऊपर थे जहां जनरल सिया के विमान का मलबा जल रहा था। उन्होंने उस स्थल का ऊपर से ही चक्कर लगाया और अपने विमान चालक को आदेश दिया कि इस्लामाबाद की तरफ बढ़ो।
कोई 5-7 मिनट के बाद मेरा जहाज उड़ा है, तो मैं अभी कोई टेक ऑफ करने के 7-8 मिनट के बाद मुझे खबर मिली कि जनरल जियार का जहाज जो है वो क्रैश हो गया है। तो देन आई टर्न बैक और वाइल कमिंग बैक आई फाउंड दैट द प्लेन हैड क्रैश्ड नियर द रिवर। तो आई सर्किल्ड ओवर एंड देन वहाँ पे जो हमारे लोग थे कुछ पहुँच गए थे जो मुल्तान वापस जा रहे थे। तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड, देयर इज नोबडी अलाइव। तो फिर हम सोचते रहे कि अगर हम बहावलपुर वापस जाते हैं वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर बुलाएंगे, वो आएगा आना जाना। तो शाम को वहाँ से टेक ऑफ करने की वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी। तो देन आई थॉट के हम वापस जाएं। हमारे जहाज में उस वक्त ब्रिगेडियर करामत भी थे। तो हमने पूछा कि बेहतर यही है कि हम वापस चले पिंडी, कुछ नहीं मालूम कि क्या होने वाला है।
रात में उस समय सीनेट के अध्यक्ष और बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने गुलाम इसहाक खान ने राष्ट्र के नाम संदेश में घोषणा की कि जनरल जियाउल हक का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है।
अब तक आप असहाब ने ये अंदोहनाक खबर सुन ली होगी कि सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद जियाउल हक साहब का आज से पहर हवाई हादसे में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदर मुमलिकत आज सुबह बहावलपुर के मुख्तसर दौरे पे तशरीफ ले गए थे। सहपहर 4:30 के लगभग उनका जहाज इस्लामाबाद वापसी के लिए बहावलपुर के हवाई अड्डे से रवाना हुआ, मगर परवास के चंद मिनट बाद एक धमाके से हवा में ही पट गया।
पाकिस्तानी जांच में पाया गया कि ये दुर्घटना षड्यंत्र की वजह से हुई और विमान के एलिवेटर बूस्टर पैकेज से छेड़खानी के सबूत पाए गए। मैंने तत्कालीन ISI प्रमुख हमीद गुल से उनकी मौत से पहले पूछा था कि आपकी नजर में इस दुर्घटना के पीछे कौन हो सकता है।
असैसिनेशन उनकी की गई वो एक हादसा नहीं था, और मेरा ख्याल है जो इंक्वायरी की गई उसने भी यही बात बताई थी। मैं अपने तमाम एनालिसिस के अंदर बाद में ये बताता रहा हूँ कि मेरी उंगली तो अमेरिका की तरफ उठती है, बिला शुबा उन्हीं को इससे फायदा हुआ, पाकिस्तान को उन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया और उस वक्त से लेकर अब तक हमारी हालत जो है वो जवाल पजीर ही नजर आ रही है। जहाँ तक ISI का तल्लक है इसमें कोई शुबा नहीं है कि फेलियर था, लेकिन ISI बाकायदा अपने खतूत के जरिए से प्रेजिडेंट ऑफिस को इन्फॉर्म कर रही थी कि प्रेसिडेंट की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए और उनकी जिंदगी को खतरा है। कुछ हमें इस किस्म के इशारे मिल रहे थे कि बहुत सी कुव्वतें उनके साथ बहुत नाराज हैं, और हमें ख्याल था कि गालिबन कहीं ना कहीं कोई बॉडी ब्लो या कोई ऐसी वारदात करने की कोशिश होगी।
लेकिन उस समय भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख आनंद कुमार वर्मा का मानना था कि CIA के पास जिया को हटाने के पर्याप्त कारण नहीं थे, और फिर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस विमान में पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत भी सवार थे।
CIA का कोई इंटरेस्ट नहीं था जियाउल्लाह को रास्ते से हटाने का, बल्कि CIA को मदद मिल रही थी उनसे अफगानिस्तान में, और CIA इस तरह की हरकत अब नहीं करती है। प्रेसिडेंशियल अनुमति चाहिए ऐसी हरकत करने के लिए।
कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसके पीछे जनरल जिया से असंतुष्ट जनरल भी हो सकते थे, और जिस तरह से जनरल मिर्जा असलम बेग एक अलग विमान से बहावलपुर से उड़े और दुर्घटना का पता चलते ही वापस बहावलपुर आने के बजाय इस्लामाबाद चले गए, उस पर भी कई उंगलियां उठी। जनरल जियाउल हक के पुत्र इजाजुल हक ने BBC को बताया,
इतना बड़ा हादसा होने के बाद अगर आप टेक ऑफ कर रहे हैं और उस इलाके के ऊपर जाकर अपने तैयारे के जरिए उसका जायजा ले रहे हैं तो ये एक नॉर्म्स के अंदर आता है, यानी कि आपके सदर पाकिस्तान, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इतना बड़ा हादसा और आपके इतने कोलीग्स उसके साथ 29 के करीब, तो आपने इतनी तकलीफ नहीं की कि आप वहां पर उतरते और उतरने के बाद खुद जायजा लेते। आपने फौरी कोशिश की कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूं, और इस्लामाबाद पहुंचकर उनका इरादा था टेक ओवर करने का, लेकिन उस के सदर गुलाम इसहाक खान और उनके साथ एयर चीफ और कुछ गवर्नर सरहद, जिन्होंने बड़ा इसरार करके उन्हें कहा कि नहीं, ये जमहूरी तरीका और आईनी तरीका जो है वो चलेगा।
जब मैंने ये तथ्य मिर्जा असलम बेग के सामने रखा तो उन्होंने उसका जोरदार खंडन किया। उनका कहना था कि जनरल जिया उन्हें विमान में बैठाना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने ही कहा कि आप तो अपना जहाज लाए हैं, आप उसी में आइए।
तरीका ये होता है कि जब चीफ आ रहा है तो मुझे रिसीव करना होता है, अगर मैं उसी जहाज पे जाऊंगा तो रिसीव कैसे करूंगा। पहले गया, उनको रिसीव किया, उनको पूरा डेमोंस्ट्रेशन देखा, कंडक्ट किया, तो वापसी में ये हमारा ये एक है वसूल जो जनरल रिया खुद वायलेट करते थे। वी डिडंट वांट टू पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट कि सारे सीनियर अफसर हम एक जहाज में या एक हेलीकॉप्टर में बैठा दें, लेकिन आदत थी कि जिसको पसंद करते थे आओ बैठ जाओ। कोई 6-7 और अफसर थे जिनको उन्होंने बैठा लिया, उनका मैनिफेस्ट में नाम भी नहीं था।
दूसरी तरफ 1988 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख रहे आनंद कुमार वर्मा ने ये रहस्य उद्घाटन किया था कि बहुत कम लोगों को पता है कि जिस समय जिया की मौत हुई उस समय भारत और पाकिस्तान सियाचिन का समाधान ढूंढने के बहुत नजदीक थे। सिया को इसलिए हटाया गया कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता हो।
उनकी डेथ जब हुई तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक बहुत अहम बात चल रही थी और बात बहुत आगे बढ़ गई थी, सियाचिन से संबंधित थी और सियाचिन के हल के लिए ये बात की जा रही थी पाकिस्तान के इनिशिएटिव पर। सवाल था इसको कॉवर्ट रूट से जो ये बातें तय की गई थी उनको ओवर्ट रूप में कैसे लाया जाए, तो वो जो करीब करीब सफलता तक पहुंच चुकी थी वो बात एकदम हट गई जब जियाउल हक साहब ने इस डील के लिए अपनी मंजूरी दी, लेकिन उनको अपने कोर कमांडर्स की स्वीकृति तो लेनी पड़ी होगी, तो उन कोर कमांडर्स को, ये मेरा अनुमान है, उन्होंने दे दी अपनी मंजूरी। तो जब उनके सामने पेश किया गया कि साहब ये बातें हो गई हैं, ये मंजूरी हो गई है, तब उनको पता चला कि इससे उनके लिए इसका क्या मायने है। और मुझे लगता है कि उस समय जिन लोगों ने हरी झंडी दिखलाई थी इसको आगे बढ़ाने के लिए, उनको लगा कि गलत काम कर दिया हमने, इसको किसी तरह रोकना है, और फिर वो रोकने में सफल हो गए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये मामला आगे बढ़ता तो राजीव गांधी को, जियाउल हक को, दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिलती।
कुछ हलकों में ये भी चर्चा थी कि इसके पीछे KGB या भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का भी हाथ हो सकता था। मैंने जब ये सवाल ISI के तत्कालीन प्रमुख हमीद गुल से पूछा था कि इसकी कितनी संभावना हो सकती है, तो उनका कहना था,
रॉ تو خیر بہت ہی را یعنی کچی آرگنائزیشن تھی اس وقت، اب شاید بڑھ گئی ہوگی، ان کے پاس اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی جس قسم کا یہ واردات ہوئی. کے جی بی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن کے جی بی نے کرنا ہوتا تو اس سٹیج پہ کیوں کرتے؟ کے جی بی جب پھنسی ہوئی تھی، جب رشیا نے ڈیسیجن لینا تھا افغانستان میں رہنا ہے یا جانا ہے، تو اس سے پہلے وہ یہ فیصلہ کرتے.
جنرل ضیاء الحق کے پتر اعجاز الحق اس بات سے قطعی مطمئن نہیں ہے جس طرح سے اس معاملے کی جانچ کی گئی. ان کا کہنا ہے کہ جانچ کی بجائے معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی.
جس طرح کی آخری انکوائری کی جو ٹیم بنی پاکستان کے اندر، وہ جسٹس شفیع الرحمان کی جوڈیشل انکوائری ٹیم تھی، اور انہوں نے اس انکوائری ٹیم میں لکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا اور یہ ایک سیبوٹاج تھا، لیکن جب تک اس حادثے کی کرمنل انکوائری نہیں ہوگی معاملات آگے نہیں جا سکتے. اور ایک واقعہ انہوں نے پیش کیا کہ جو جہاز کا ملبہ تھا اسے ایئر فورس کے ایک ہینگر میں رکھا ہوا ملتان میں، جب کسی نے جا کر انہیں کسی آفیسر نے بتایا کہ اس میں شاید کسی نے نیچے سے میزائل بھی مارا ہو، کیونکہ اس کا جو ہول تھا وہ اندر کی طرف کھلا تھا جیسے باہر سے امپیکٹ ہوتا ہے، تو جب وہ دیکھنے کے لیے انہوں نے ایئر فورس سے رابطہ کیا اور معلوم ہو گیا کہ وہ ہینگر میں اس کی ٹیل جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے ابھی تک، لیکن 48 گھنٹے کے بعد جب وہ انکوائری کے لیے گئے تو وہ وہاں سے نکال لی گئی تھی، اور بعد میں فوری طور پر اس ملبے کو اسکریپ میں بھیج بھی دیا گیا.
ایک اور تھیوری ہے کہ ضیاء کے ویمان میں آم کی پیٹیوں کے ساتھ وی ایس نرو گیس رکھ دی گئی تھی، جس سے پائلٹ بے ہوش ہو گیا اور ویمان سے اس کا نینترن جاتا رہا. جنرل اسلم بیگ کہتے ہیں،
ایکسپلوڈنگ مینگوز کی بات کرتے ہیں، وہ تو انہی کے اپنے جو پرسنل سیکرٹری رہے ہیں جنرل محمود درانی، یہ انہی نے رکھوائے تھے. پھر آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ میں جس دن پہنچا ہوں بہاولپور سے، کہ اسی دن میں نے سننا شروع کیا کہ یہ ذمہ دار ہے جنرل اسلم بیگ. یعنی اس طرح کی جو ریومر ہے وہ اس وقت پھیلتی ہے جبکہ پہلے سے یہ بات طے ہوئی ہو اور یہ بات عوام تک پھیلا دی گئی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ امریکن کا، سی آئی اے کا اس جنگ کے دوران دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ نیٹ ورک پاکستان میں بنا، تو ان کے لیے ایک ایسی افواہ پھیلا دینا انہی کا کام تھے.
ابھی تک کسی جانچ کرتا نے سبھی سندگدھوں کو ایک جگہ اکٹھا کر رہسیہ پر سے پردہ ہٹانے کی کوشش نہیں کی ہے، کیونکہ شاید سچ کچھ لوگوں کے لیے بہت کڑوا ثابت ہوتا، اور رہسیہ کا پردہ فاش پہلے سے ہی سمویدنشیل اس علاقے کے لیے اور سمسیائیں کھڑی کر دیتا.
ویویچنا پر اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیے گا. اور اب وقت ہے کھیل سماچاروں کا. اندو پانڈے میرے سامنے بیٹھی ہیں.
آسٹریلیائی کرکٹ ٹیم نے 17 ستمبر سے شروع ہو رہے بھارت دورے کے لیے اپنی ون ڈے اور T20 ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. آل راؤنڈر جیمز فاکنر کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے. تیز گیند باز مشیل سٹاک ابھی پیر کی چوٹ سے ابھر نہیں پائے ہیں، اس لیے انہیں اس دورے پر آرام دیا گیا ہے. اور 21 اگست کو بھارت اور شری لنکا کے بیچ 5 ون ڈے میچوں کی سیریز شروع ہو جائے گی. بھارتیہ کیپٹن وراٹ کوہلی آئی سی سی کی آج تازہ ون ڈے رینکنگ میں بلے بازوں کی سوچی میں ٹاپ پر بنے ہوئے ہیں، اور آئی سی سی ایک دیوسیہ ٹیم رینکنگ میں بھارت ابھی نمبر 3 پر ہے، اور اسے اس پوزیشن پر بنے رہنے کے لیے آگامی شرنکھلا 4-1 سے جیتنی ہوگی. اور اگر ہم ٹینس کی بات کریں تو بھارت کی ثانیہ مرزا اور چین کی پینگ شوائی کی چوتھی سیڈ جوڑی نے سنسناٹی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں اپنے وجئی ابھیان کو آگے بڑھاتے ہوئے مہیلا یوگل سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے، اور روہن بوپنا بھی اپنے جوڑی دار کے ساتھ پروش یوگل کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. جون میں 10th فرینچ اوپن خطاب جیتنے والے 15 بار کے گرینڈ سلیم چیمپئن نڈال نے فرانس کے رچرڈ گاسکیٹ کو دوسرے دور میں ہرایا. کمر کی چوٹ کی وجہ سے راجر فیڈرر یہ ٹورنامنٹ نہیں کھیل رہے، اس سے نڈال اے ٹی پی رینکنگ میں اگلے سپتاہ اینڈی مرے کو پچھاڑ کے ٹاپ پر ہو سکتے ہیں.
اندو پانڈے آپ کا بہت بہت شکریہ. اب کارکرم سماپت کرنے کا وقت ہو چلا ہے. آئیے چلتے چلتے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر. بی بی سی سماچار. ابھی ابھی آئی خبر کے مطابق فن لینڈ کی پولیس کا کہنا ہے کہ ترکو شہر میں چاقو سے ہوئے حملے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں. ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ ایک سندگدھ کے پیر میں گولی مار کر اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے لوگوں کو شہر کے کیندر میں نہ جانے کی صلاح دی ہے. اسپین کے کیتالونیا پرانت پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کل اور آج ہوئے حملوں کے ذمہ دار لوگوں کی پہچان کر لی ہے، مگر بارسلونا کا حملہ ور ابھی بھی فرار ہے. اتر پردیش کے گورکھپور میں اسپتال میں ہوئی درجنوں بچوں کی موت پر الہ آباد ہائی کورٹ نے راجیہ سرکار کو رپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے. اسی مہینے 10 دنوں کے اندر 80 بچوں کی موت ہو گئی تھی. ہانگ کانگ کے نیائے منتری نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ 3 یوا لوک تنتر سمرتھک کارکرتاؤں کو کڑی سزا دلوانے کے لیے ان کا کوئی راجنیتک مقصد تھا. بی بی سی سماچار.
मुख्य समाचारों के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का हमारा सफर यहीं तक। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी आपसे विदा लेता हूं। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।